नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबीसी। आज का न्यूज़मेकर में हम चर्चा करेंगे उस कानून और उसके सारे प्रावधानों की, जिसके तहत जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। हम बात करेंगे एनएसई की, तो ध्यान से सुनिएगा आज का न्यूज़मेकर और इसे अपने साथियों के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा। आपदा में अवसर, देश के प्रधानमंत्री ने कोविड संक्रमण काल में इसे कहा तो था देशवासियों को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन जीवन पर संकट के बीच देश के चंद स्वार्थी लालची कालाबाजारियों ने इसे अपनी कमाई का मूल मंत्र बना लिया, जो कभी ऑक्सीजन माफिया के तौर पर तो कभी रेमडेसिविर कालाबाजारियों के तौर पर सामने आए। बीते दिनों देश में कई राज्यों के कई शहरों बल्कि गाँव तक ऑक्सीजन की किल्लत से सिस्टम की सांसें फूलती दिखी। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से भी जूझना पड़ा। अचानक बढ़ी मांग को पूरा कर पाना दवा उत्पादक कंपनियों से लेकर सरकार तक के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। आपदा काल में जीवन पर भारी संकट की तस्वीरें चारों तरफ से सामने आईं। ऐसे भयंकर संकट काल में चंद अस्पताल और दवा कारोबारियों ने मिलकर एक ऐसा नेक्सस बनाया जिसने इन दवाओं के अवैध स्टॉक से लेकर ऊंची दर पर कालाबाजारी के नए रिकॉर्ड बनाए। ये लालची यहीं पर नहीं रुके, बल्कि जीवन बचाने वाली इन दवाओं की नकली डोज तैयार कर लोगों की जिंदगी से खेलने तक से कतई संकोच नहीं किया। ऐसा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी सामने आया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो सरकार हरकत में आई और धीरे धीरे रेमडेसिविर स्टॉक की निगरानी और सीधे अस्पतालों में सप्लाई व्यवस्था तय की गई। बावजूद इसके कालाबाजारियों की कारगुजारियां थमी नहीं। कोरोना महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक सख्त हो चुकी हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी राज्यों को इन कालाबाजारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अवैध रूप से कई गुना कीमत पर रेमडेसिविर बेचने वाले 37 आरोपियों के खिलाफ कलेक्टर ने एनएसई की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इंदौर में 9, उज्जैन में 9, ग्वालियर में 4, जबलपुर में 4, शहडोल में 4, भोपाल में 2, धार में 2, मंदसौर, छिंदवाड़ा और रतलाम में एक एक प्रकरण और कुल मिलाकर 37 प्रकरणों पर एनएसी को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा इंदौर में 30 और भोपाल में 8 आरोपियों को फिलहाल एनएसी के तहत जेल भेजा जा चुका है। आज का न्यूज मेकर में हम आपको विस्तार से ये बताने जा रहे हैं कि जिस एनएसए के तहत इन आरोपियों को पकड़ा जा रहा है वो कानून प्रशासन को सरकार को आखिर क्या अधिकार देता है। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका, ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर स्थानीय प्रशासन को किसी भी व्यक्ति पर देश की सुरक्षा या सद्भाव को संकट में डालने का शक हो तो ऐसा होने की स्थिति में वो पहले से बिना सबूत के किसी शख्स को पकड़ सकती है। ये कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्तियां देने के लिए जोड़ा गया। यह कानून सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति देता है। सरकार को अगर ये लगे कि कोई शख्स देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, सद्भाव के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के काम करने वालों के लिए खतरा है या उसे रोकता पाया जा रहा है तो उस शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून का इस्तेमाल जिले के कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे और अधिकार के मुताबिक कर सकते हैं। चलिए अब आपको विस्तार से ये बताते हैं कि इस कानून के तहत क्या नियम है। रासुका में संविधान से मिला सबसे बड़ा अधिकार, आजादी के अधिकार पर रोक लगाई जाती है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर 3-3 महीने के लिए हिरासत की अवधि बढ़ाई जा सकती है। रासुका या एनएसए के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप लगाए 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद जिला कलेक्टर को राज्य सरकार को ये बताना पड़ता है कि उन्होंने किस आधार पर गिरफ्तारी की है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाईकोर्ट की एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपनी अपील दाखिल कर सकता है। मुकदमे के दौरान रासुका लगे व्यक्ति को वकील की अनुमति नहीं मिलती। जब कोर्ट में मामला जाता है तो सरकारी वकील मामले की तफसील कोर्ट को देता है और जज उसी आधार पर उस केस को जांचता है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल ये कानून बना कैसे, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई। एनएसए एक प्रिवेंटिव या निरोधक कानून है, जिसका अर्थ है किसी भी घटना के होने से पहले सरकार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। प्रिवेंटिव कानून का इतिहास आजादी से भी पुराना रहा है। सन 1881 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का एक एक्ट बनाया। इसमें घटना होने के पहले ही किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की गिरफ्तारी की व्यवस्था दी गई। फिर 1919 में रोल एक्ट लाया गया, जिसमें ट्रायल तक की व्यवस्था नहीं थी। मतलब ये कि हिरासत में लिया गया कोई भी शख्स कोर्ट नहीं जा सकता था। भारतीयों ने इसे गलघोंटू या गैंगिंग एक्ट भी कहा। इसी एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग कांड हुआ था। देश में आजादी के बाद इस कानून के इतिहास की बात करें तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आए। 31 दिसंबर 1969 में इस एक्ट की अवधि खत्म हो रही थी और ऐसे वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 1971 में विवादित कानून मीसा या मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए। 1975 में इमरजेंसी के दौरान इसे राजनीतिक विरोधियों के दमन का एक बड़ा जरिया बनाया गया। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब इस कानून को 44वें संविधान संशोधन के तहत खत्म किया गया। देश में चुनावी प्रक्रिया चलती रही और 1980 में इंदिरा गांधी एक बार फिर देश की प्रधानमंत्री बनी। उनकी सरकार बनते ही 23 सितंबर 1980 को एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद से पास हुआ। 27 दिसंबर 1980 को ये तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका के तौर पर अस्तित्व में आया। मौजूदा दौर में जिन व्यक्तियों के ऊपर रासुका लगाई जा रही है, उन सब के खिलाफ देश और देशवासियों में भारी गुस्सा है। जब एक एक सांस का मोल हजारों रुपए देकर भी व्यक्ति अपनों को बचा नहीं पा रहा, तो ऐसे कालाबाजारियों और सिस्टम के भीतर से उन्हें सपोर्ट करने वालों के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। चाहे ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो या रेमडेसिविर की किल्लत के बीच नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने का मामला, इन तमाम आरोपियों पर रासुका के तहत की गई कार्रवाई देश में हजारों पीड़ित लोगों को थोड़ा सा संतोष जरूर दे रहा है। आज का ये न्यूज़मेकर आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। नमस्कार।